देवी जी, भाई वसंत कुमार जी, स्वामी निखिलात्मानंद जी, देवियों और सज्जन, पिछले वर्ष की भांति इस बार पुनः भाई बसंत कुमार जी के स्नेहपूर्ण आग्रह के कारण यह अवसर प्राप्त हुआ है कि आप सबके बीच चार दिन तक हनुमत चरित्र के रस का आस्वादन किया जाए। भाई रमन लाल जी ने बहुत पहले ही पत्र लिखा था कि इस बार फिर से कथा सुनने की इच्छा है और इसलिए चार पांच दिनों का समय निकालिए। प्रभु की कृपा से यह चार दिनों का योग प्राप्त हुआ है। जब हम लोग परम संत हनुमंत के पावन चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। पिछले वर्ष रामचरितमानस पर प्रवचन करते हुए भूमिका में जो कुछ शब्द मैंने कहे थे वे शब्द आज भी प्रयुक्त होते हैं और वह यह है कि विगत 25 वर्षों से पंडित राम किंकर जी महाराज का रामायण प्रवचन यहां पर होता रहा है और इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो भव्य समारोह हुआ उसकी जानकारी भी पंडित जी से मिली। रामायण प्रवचन में जो सूत्र उन्होंने आपके समक्ष दिए हैं उन्हीं सूत्रों का कुछ अंश, कुछ सूत्र मैं आपके समक्ष ही रखूंगा। मेरी अपनी कोई नई बात नहीं होगी। उन्होंने हनुमत चरित्र के प्रसंग में तथा और भी विभिन्न प्रसंगों में जो बातें कही होंगी उन्हीं बातों में से कुछ बातें आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। आवृत्ति मात्र यह प्रवचन होगा पर मैं समझता हूं कि जो बातें हमें अच्छी लगती हैं उनको यदि बार बार दोहराई जाए तो भी हमें अच्छा लगता है और फिर यह तो प्रभु के गुणानुवाद का कीर्तन है और इसलिए इन बातों को यदि थोड़ा सा दोहरा भी दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका आनंद विशेष कम नहीं होगा। इसी दृष्टि से यह हनुमत चरित्र का प्रसंग आपके समक्ष रख रहे हैं। आइए मानस प्रवचन की परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवन नाम संकीर्तन कुछ क्षण कर लें और फिर विषय में प्रवेश करें।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की वंदना विनय पत्रिका में और हनुमान बाहुक में जिस प्रकार की है, उससे उनके विलक्षण चरित्र के सूत्रों को हम प्राप्त करते हैं। विनय पत्रिका में अन्य लोगों की तुलना में हनुमान जी की वंदना उन्होंने विस्तार से की है और इसी से ऐसा लगता है कि कितने निकट का अनुभव वे हनुमान जी के साथ करते हैं और हनुमान जी के प्रति उनकी क्या धारणा है। जो यह कहा है उन्होंने, राम से अधिक राम के दाता, तो यह बात भी हनुमान जी पर पूरी तरह से लागू होती है। भगवान श्री राम के मंदिर तो बहुत से हैं, पर उनकी तुलना में हनुमान जी के निमित्त जो मंदिर स्थापित हुए हैं संख्या में कहीं अधिक है। चाहे वह छोटा सा चबूतरा हो, गांव हो, हनुमान जी की स्थापना की गई है। और इस प्रकार जो कहा गया है कि राम की अपेक्षा राम के दास बड़े हैं, तो वैसे भी गणित की दृष्टि से हनुमान जी बड़े हैं। और यदि यह कहा जाए कि दास के माध्यम से सेवक के पास होता है, तो उस दृष्टि से भी हनुमान जी बड़े ही हैं। मंत्री के पास पहुंचने के लिए चपरासी को खुश करना पड़ता है, यह तो आप सर्वत्र जानते हैं। यदि वह खुश नहीं हुआ तो अधिकारी के पास पहुंचना बड़ा कठिन काम है। आप जितना भी नाम लिख करके चिट दे दें, अब यह तो चपरासी पर निर्भर करता है कि वह चिट सबसे पहले दे या सबसे अंत में दे या नहीं दे। संभवतः इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करना अधिक आवश्यक समझा। और कभी वे जो कहा करते हैं कि हनुमंत की यदि कृपा हुई तो भगवान राम की कृपा तो अवश्य होगी, इस कथन में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति मालूम नहीं पड़ती। हनुमान जी परम संत है। संत और परम संत में थोड़ा अंतर होता है। संत अपने साथ भगवान के तादात्म्य को लक्ष्य रखता है जीवन का, ईश्वर के दर्शन वह अपने जीवन में करता है, ये संत हुआ करते हैं। परम संत वह है जो जीव को ईश्वर के साथ मिलाता है। एक और वह जीव को प्रेरित करता है कि तुम ईश्वर के पास चलो, और दूसरी ओर वह ईश्वर से कहता है कि जीव तो अपंग है, चल नहीं सकता, तुम्हें चल करके जीव पर कृपा करनी चाहिए। जो ईश्वर में करुणा भरता है जीव के लिए और ईश्वर को बाध्य कर देता है जीव के पास जाने के लिए, ऐसे लोगों को हम परम संत कहते हैं। श्री राम कृष्ण की भाषा में वे कहा करते थे, दो प्रकार के ज्ञानी पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, और उन्होंने उदाहरण लिया जैसे कुआं खोदा जा रहा है, खोदते खोदते कुएं में जल निकल गया, तो एक प्रकार की स्थिति यह है, जो कुएं खोदने वाले हैं वे कहते हैं कि भाई अब तो कुएं में जल मिल गया, फावड़ा कुदाल यह सब जो कुछ है कुएं में ही रहने दो, पानी की धार मोटी आ रही है, फावड़े और कुदाल को निकालने में अधिक श्रम करना पड़ेगा, इसका प्रयोजन तो हो गया, वृथा क्यों निकालने का कष्ट करते हो, पड़े रहने दो। तो एक प्रकार के लोग हैं जो फावड़ा और कुदाल कुएं के भीतर में ही पड़े रहने देते हैं, यह सोच करके कि उनका प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका, कुआं खुद गया, जल मिल गया। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते हैं कि कुआं तो खुद गया पर हम दूसरी जगह भी कुआं खोदेंगे, दूसरी जगह भी पानी निकालने की चेष्टा करेंगे, इसलिए यह कुआं कुदाल निकाल लो, फावड़े निकाल लो, इनका उपयोग हम दूसरे स्थान के लिए करेंगे, कुछ श्रम होता है पर फावड़ा और कुदाल में निकाल लेते हैं, इसलिए कि दूसरी जगह वे कुआं खोदेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं पहले प्रकार के लोगों को यदि संत कहा जाए तो दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वे परम संत हैं, जो केवल एक ही जगह एक ही जीव को भगवान से मिलाकर के शांत नहीं होते बल्कि सब जीवों को ईश्वर से मिलाने के लिए आकुल रहते हैं, और दूसरी ओर ईश्वर को वे बाध्य करते हैं जिससे वे आए जीव के पास और अपनी कृपा का अवतरण जीव के हृदय में करा दे। एक दूसरा उदाहरण श्री रामकृष्ण दिया करते थे, उनकी तो सारी उपमाएं घर की होती थी, जो कुछ वे देखते थे उसी से अपनी उपमाओं को वे ग्रहण करते थे। वे कहते थे कि जीव चार प्रकार के होते हैं, एक तो बद्ध होता है, दूसरा मुमुक्ष होता है, तीसरा मुक्त होता है, और एक चौथा भी प्रकार है जो कभी भी बंधन में नहीं फंसता। जो मुक्त है उसको तो उन्होंने संत कहा, और जो कभी भी बंधन में नहीं फंसता उसको उन्होंने परम संत कहा। और वे उपमा देते हैं मछली पकड़ने से, जैसे मछुआरा जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए, कुछ चतुर मछलियां होती हैं जो कभी जाल में फंसती नहीं, मछुआरा कितनी भी चेष्टा करे, यह तो नित्य मुक्त जीव की उपमा है या परम संत की उपमा है, जो हरदम मुक्त रहते हैं, कभी जाल में फंसते ही नहीं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो जाल में पड़ तो गई है परंतु जाल में पड़ जाने के बाद छटपटाती हैं बाहर निकलने के लिए, जाल को दांत में पकड़ करके काट देती हैं और निकल जाती हैं। मछुआरा बोलता है अरे वह देखो बड़ी मछली निकल गई, यह मुक्त की उपमा है। जो मुमुक्षु है वह फंसा तो हुआ है, मछली जाल में पड़ी तो है, छटपटा रही है निकलने के लिए, निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तरह तरह से चेष्टा की पर निकल नहीं पा रही है, यह मुमुक्षु की उपमा है। और एक प्रकार की मछली वह भी है जो निश्चेष्ट पड़ी रहती है, उस जाल के तंतु को अपने मुंह में दबा करके यह सोचती है कि मैं तो अब ठीक हूं, मैं मानो निकल गई हूं, उसे ही चारा मानती है और बंधन में ही सुख का अनुभव करती है। यह बद्ध की उपमा है। तो यह जो हनुमान जी हैं, परम संत हैं, कभी भी फंसे नहीं। प्रारंभ से ही उनका जो जीवन दिखाई देता है विलक्षण। हम यह पढ़ते हैं कि जब उन्होंने जन्म लिया वे सूरज की तरफ उड़े, मुंह में उसे निगल लिया फल समझ करके। बात तो अटपटी लगती है, हनुमान जी हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रणी, और समझ जाएं कि सूरज एक फल है और उस फल को खा करके अपनी भूख को शांत कर ले, तो दोनों बातें ठीक एक साथ नहीं बैठती। या तो यह कहें कि हनुमान जी ज्ञानी नहीं है और वे सूरज को फल ही समझते हैं और इसलिए छलांग मार करके उसे लील लेते हैं, या फिर कहें कि वे ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और वे सूरज की ओर जो लपकते हैं उसका कोई तात्विक अर्थ है। तो यदि वे ज्ञानी हैं तो इसका एक तात्विक अर्थ है, और उस तात्विक अर्थ को थोड़ा समझने की हम चेष्टा करेंगे। तो यह बताया गया उनके जीवन के प्रसंग के माध्यम से कि हनुमान जी छलांग लगाते हैं, जन्म लेने के पश्चात ही सूरज को देखते हैं। तो इससे आप पढ़ते हैं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। दो परंपराएं हैं, उत्तर भारत में दीपावली से एक दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, और विशेषकर महाराष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के दिन उनका जन्म मनाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वह जो पहला है दीपावली से एक दिन पहले का, उसको वे जन्म तिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। वायु पुराण में भी इसी को स्वीकार किया गया, उसके साथ संगति बैठ जाती है। वह जो कथा है उनके जन्म की, बाल्य लीला की, कि जन्मते ही वे सूरज को पकड़ने के लिए छलांग लगाते हैं, उसकी संगति बैठ जाती है। संगति यों बैठती है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, राहु सूरज को लीलता है, तो हनुमान जी जन्म लेते हैं और उसके दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने वाला था, राहु लीलने वाला था, और तभी हनुमान जी छलांग मार करके भले ही फल समझ करके हो वे सूरज को निगल लेते हैं। राहु को बड़ा क्रोध आता है, वह जाकर के इंद्र से शिकायत करता है, आप लोगों ने विधान बनाया, मैं तो सूरज को पहले ही लील लेना चाहता था, पर आप लोगों ने विधान बनाया कि ठीक है सूरज को मैं निगलूंगा, अपने अभिमान की सार्थकता मेरे जीवन में होगी, मैं बदला चुका लूंगा और फिर उसके बाद उसे उगल दूंगा, पर यह कौन दूसरा आ गया जिसने मेरे अधिकार पर कुठाराघात किया। इंद्र ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया कि जो तुम्हारे बदले जाकर के सूरज को निगल ले। इंद्र को भी आश्चर्य होता है, और हम पढ़ते हैं कि इंद्र ऐरावत पर बैठ करके आता है, हनुमान जी को देखा, वज्र का प्रहार किया। अब वज्र के प्रहार से अधिक कुछ तो नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हनुमान जी मूर्छित हो गए, थोड़ी तनिक सी तिरछी हो गई। जब मूर्छित हो गए तो वायु देवता कुपित हो गए, उन्होंने वायु का रोध कर दिया। वायु का रोध होने से प्राणों पर आबनी, समस्त विश्व त्राही त्राही करने लगा। देवता भाग करके इंद्र के पास आए, सब जाकर के वायु देवता को मनाते हैं, हनुमान जी की जो मूर्छा है वह तो दूर कर दी जाती है, वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी देवता ने वही वरदान दिया हनुमान जी को, किसी ने कहा कि अमुक शस्त्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, किसी ने और कुछ कहा, तो ब्रह्मा ने कहा कि मेरे अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भिन्न भिन्न देवताओं के जो विशिष्ट अस्त्र थे उन अस्त्रों से अब प्रभावित रहने की बात कही गई हनुमान जी के संदर्भ में, यह कथा है। और यह भी हम जानते हैं कि ये जो हनुमान जी आते हैं ये भगवान शिव के एक अंश से, यह भी कथा हम पढ़ते हैं। भगवान शंकर और भगवान श्री राम दोनों सखा हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा है, आदर भाव है, शिव जी की इच्छा है कि प्रभु की सेवा करें, मन ही मन श्री राम को अपना इष्ट और प्रभु मानते हैं। पर भगवान श्री राम तो ऐसा कभी सपने में भी विचार नहीं कर सकते कि मैं शिव जी से सेवा ग्रहण करूंगा। तब भगवान शंकर अपने एक अंश से पवन सुत होते हैं, पवन देवता के माध्यम से हनुमान के रूप में वे आते हैं। एकादश रुद्र हैं, तो एक रुद्र हनुमान का रूप धारण करता है, यह कथा भी हम पढ़ते हैं। अब उसके पीछे की जो कथा रामचरितमानस में आती है आप सब जानते हैं, रावण का अत्याचार हो रहा है, देवता त्रस्त हैं, मुनि त्रस्त हैं, गंधर्व त्रस्त हैं। तब पृथ्वी धेनु का रूप लेकर के जहां पर ये देवता और मुनि छिपे हुए हैं वहां पर जाती है और पृथ्वी रुदन करती है कि तुम लोग यहां पर छिपे बैठे हो, मुझ पर कितना अत्याचार है, मैं कितना भार आखिर सहन कर सकती हूं। सब मिलकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी समझाते हैं कि क्या करना चाहिए। वे सब मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस समाज में शिव जी भी हैं ऐसा संकेत हमें प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछून बसाई, जाकर तै दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। ब्रह्मा जी ने समझाया कि पृथ्वी हम भी तो विपन्न में पड़े हुए हैं, तो वही एकमात्र हमारी सहायता करेंगे, प्रभु ही करेंगे, चलो हम सब मिलकर के उनके पास जाएं। और वे सब जाते हैं या प्रार्थना करते हैं और तब एक आकाशवाणी होती है, जानी सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। गगन गिरा होती है और गगन जो गिरा होती क्या करती, जन डर पहु सुर सिद्ध मुनीसा, तुम्ही लाग धरि हो नर बेसा। तुम लोग डरो मत, तुम्हारे लिए मैं नर रूप धारण करूंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा, नेहो दिन कर बंसौदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तहिक मैं पूरब पर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौसलपुरी प्रगट नर भूपा। जहां पर वे कहते हैं कि वे कौशल्या और अदिति को मैंने वरदान दिया था, मनु और अदि को, कश्यप और अदिति को, और वे अभी दशरथ और कौशल्या के रूप में आए हुए हैं कौशलपुरी में, उनके घर में जाकर के अवतरित होऊंगा, जिनके गृह अवतरित हो जाई, वहां पर रघुकुल तिलक सुचारियों भाई। और जब यह सुनते हैं ब्रह्मा जी तब वे कहते हैं, निज लोकन बिरंची गे
केवल इहे सिखाय बानर तनु धरि धरि मही हरि पद से बहु जाय।
कहा कि चलो देवताओं से उन्होंने कहा कि तुम लोग वानर तनु धारण करो और जाकर के प्रभु के पद की सेवा करो। तो ये वानर के रूप में अवतरित होते हैं। वानर के रूप में क्यों अवतरित हुए उसकी गाथा भी कहते हैं तुलसीदास जी। आप पढ़ते हैं कि रावण तपस्या कर रहा था अपने भाइयों के साथ और जिस समय ब्रह्मा आते हैं भगवान शंकर के साथ वरदान देने के लिए तो रावण वरदान मांगता है। पहले तो वह कहता है कि हम अमर रहना चाहते हैं और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरता का वरदान तो नहीं मिला करता। भगवान शंकर वरदान देने में बड़े आशु हैं, बहुत जल्दी वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा है। और कभी कभी वरदान देकर के दैत्यों को देवताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। बहुत सहज हैं, भोले हैं, ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देवता हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बहुत सावधान रहते हैं कि कभी कोई दैत्य तपस्या करे और शंकर जी वरदान देने के लिए जाएं तो कम से कम हमें बताते हुए जाएं ताकि हम तो साथ में चले जाएं। शिव जी भले विचार न करें पर हम तो विचार करेंगे और शिव जी से कहेंगे कि आप इस प्रकार का वरदान मत दीजिए। और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जिस समय रावण तपस्या कर रहा है, कुंभकर्ण तपस्या कर रहा है, विभीषण तपस्या कर रहे हैं, शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी अब तो मुझे वरदान देने के लिए जाना पड़ेगा। आपने कहा था सूचित करने के लिए, सो आपको मैंने सूचित किया है। और तब कहा ब्रह्मा जी ने कि आप अकेले मत जाइए, मुझे साथ ले लीजिए, नहीं तो आप स्वयं तो बहुत मुश्किल में पड़ते हैं। भस्मासुर की कथा तो बता ही दी, कहा कि आपने भस्मासुर को वरदान दिया और वह तो आपको भी भस्म करने पर तुला था, फिर आप ही तो भागते हैं, बचने का रास्ता आपको दिखाई नहीं देता। शंकर जी ने कहा सो बात तो ठीक, इसीलिए आपसे हमने यह कह दी। और तब जब उन्होंने ऐसा कह दिया, ये जाते हैं वरदान देने के लिए। जब हम जब पढ़ते हैं तो एक विलक्षण तथ्य की अनुभूति होती है। वह तथ्य यह है, यह कैसी विचित्र बात है कि जैसे देवताओं को वे वरदान देते हैं उसी प्रकार वे दैत्यों को भी वरदान देते हैं। क्या शंकर जी में विवेचना की शक्ति नहीं है? क्या विवेक नहीं है? जब जानते हैं कि दैत्य वरदान पाकर के और भी अत्याचारी बन जाता है, तब भगवान शंकर को क्या यह उचित नहीं है कि दैत्यों को वरदान देने के लिए न जाए, वे केवल देवताओं को ही वरदान दें? ऐसा प्रश्न हमारे मन में भी आया था जब हम पढ़ते थे। और तब हमें लगता था कि जब देवताओं को या शंकर जी को, ये जो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं, उनको जब मालूम है कि दैत्य वरदान पाकर के और भी उच्छृंखल हो जाते हैं तो उनको वरदान क्यों देना? तब एक सूत्र बाद में, बहुत बाद में पकड़ में आया, शंकर जी कौन? हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में, अहंकार शिव, और फिर ये ब्रह्मा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महान। ये जो भगवान शंकर हैं ये समस्त अहंकार, जैसे मेरे भीतर अहंकार, वैसे ही एक विश्व का समष्टिगत अहंकार, और ये शंकर जी हैं। और उसी प्रकार जो ब्रह्मा है वे समष्टिगत बुद्धि हैं, विचार के देवता हैं, मन शशि चित्त महान। जो विष्णु है वे समष्टिगत चित्त हैं, और यह जो जिसे कहा गया कि यह जो चंद्रमा है वह समष्टिगत मन है, यह भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे समक्ष रूपक रखे गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा गंभीर है कि भगवान शंकर जैसे देवताओं को वरदान दे देते हैं, वैसे ही वे दैत्यों को क्यों वरदान देते हैं? इसलिए देते हैं कि वरदान देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता है, यह बाध्यता है।